के मुख्य समाचार प्रशारी जैन के साथ। न्यू साउथ वेल्स में 825 नए कोरोना मामले दर्ज, 3 की मृत्यु। भारत में 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन को मिली मंजूरी। और AFL में पोर्ट एडिलेड पहुंचा शीर्ष 2 के स्थान पर। और अब खबरें विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स ने ऑस्ट्रेलिया के अब तक के सबसे अधिक दैनिक मामले दर्ज किए हैं। राज्य में आज 825 स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से लगभग 733 मामले संक्रमित होते हुए समुदाय में मौजूद थे। इसी के साथ 3 लोगों की मृत्यु भी दर्ज हुई है। इनमें से 90 के दशक में एक व्यक्ति थे जिनको टीका नहीं लगा था। दूसरे 80 के दशक में एक व्यक्ति थे जिन्हें टीके की पूरी खुराक मिल चुकी थी। ये दोनों ही लोग नॉर्मनहर्स्ट के ग्रीनवुड एज्ड केयर के निवासी थे। तीसरी व्यक्ति 90 के दशक में एक महिला थी जिन्हें टीके की एक ही खुराक प्राप्त हुई थी। प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजिक्लिन का कहना है कि इस समय लोगों को नियमों का सख्ती से पालन करने की विशेष आवश्यकता है।
The vast majority of people get how important it is to stay home, and I receive messages every day from people who express their personal circumstances about how difficult it is, and it really breaks my heart hearing some of the stories, but the bottom line is they know they're doing it for the greater good, and I just appeal to everybody, please consider the greater good. Only a handful of people are doing the wrong thing, but it's having catastrophic consequences.
सेंट्रल सिडनी में आज 1400 से भी अधिक पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं ताकि एक संयोजित एंटी लॉकडाउन विरोध रोका जा सके। न्यू साउथ वेल्स प्रशासन का कहना है कि पुलिस के यूनिट सिडनी की सड़कों और परिवहन सेवाओं पर तैनात रहेंगे ताकि शहर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के इलाकों तक जाने वाले लोगों को संभाला जा सके। यह विरोध तब आता है जब न्यू साउथ वेल्स सरकार ने कल 642 मामले और 2 मृत्यु दर्ज करने के बाद ग्रेटर सिडनी के इलाकों में सितंबर के आखिर तक लॉकडाउन का विस्तार घोषित कर दिया था। इसी के साथ सिडनी के 12 अति चिंताजनक स्थानीय सरकारी क्षेत्रों में शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए सोमवार 23 अगस्त से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसी के साथ स्थानीय निवासी केवल 1 घंटे के लिए ही व्यायाम करने के लिए बाहर जा सकते हैं। उधर विक्टोरिया ने 61 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 22 मामले संक्रमित होते हुए एकांतवास में थे और 48 मामले मौजूदा प्रकोप से जुड़े हुए पाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि रैपिड PCR टेस्टिंग के इस्तेमाल से अतिरिक्त 16 मामले और दर्ज किए गए हैं जो कल के आंकड़ों के साथ जोड़े जाएंगे। विक्टोरियाई अधिकारियों का कहना है कि राज्य में गहराते कोरोना संकट के मद्देनजर वे अतिरिक्त प्रतिबंधों पर विचार कर रहे हैं। शहर से संक्रमण फैलने के बाद क्षेत्रीय विक्टोरिया में लॉकडाउन लगने की संभावना जोर पकड़ रही है। राज्य के उत्तर में स्थित शेपर्टन में 17 COVID-19 मामले दर्ज किए गए हैं। प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने लोगों से फिर आग्रह किया है कि इस सप्ताहांत खुशनुमा मौसम में लोग घर से बाहर ना निकले और प्रतिबंधों का पालन करें। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में 8 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। ये सभी मौजूदा प्रकोप से जुड़े हैं और संक्रमित होते हुए एकांतवास में थे। राज्य में अब 290 एक्सपोजर साइट्स हैं जिनमें से कई बेलकॉनन में हैं। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कैरन कोलमन ने कहा है कि राज्य में अब 102 कोरोना मामले हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आने वाले गुरुवार 26 अगस्त सुबह 12:01 से न्यू साउथ वेल्स को एक्सट्रीम रिस्क की जगह घोषित कर देगा। इसका मतलब यह होगा कि न्यू साउथ वेल्स में रहने वाले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाई नागरिक राज्य में मानवीय कारणों से भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। घोषणा के बाद सभी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को वापसी के लिए 5 दिन का मौका दिया जाएगा। प्रीमियर मार्क मैकगवन का कहना है कि न्यू साउथ वेल्स में रहने वाले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाई नागरिक समझ लें कि उनके पास घर लौटने के लिए वक्त बहुत कम है।
I understand this may be an anxious time for some, but the risk in New South Wales is too big and we need to take new steps to protect Western Australia to keep our state safe.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में फंसे सभी अमरीकी और समर्थक अफगानियों को सुरक्षित निकालने की शपथ ली है। काबुल एयरपोर्ट से लगातार लोगों के तालिबान से बच निकलने की कोशिशों के हृदय विदारक दृश्य सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि 14 अगस्त से अब तक लगभग 6,000 अमरीकी सैनिकों ने 13,000 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला है। राष्ट्रपति का कहना है कि यह इतिहास के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल बचाव कार्यों में से एक है।
These operations are going to continue over the coming days before we complete our drawdown. We're going to do everything that we can to provide safe evacuation for our Afghan allies, partners, and Afghans who might be targeted because of their association with the United States. But let me be clear. Any American who wants to come home, we will get you home.
नाटो संगठन के सभी विदेश मंत्रियों की अफगानिस्तान की स्थितियों को लेकर एक वार्ता हुई है, जिसमें यह चर्चा हुई कि वहां स्थित अपने अपने नागरिकों और अधिकारियों को किस तरह घर वापस लाया जा सकता है। 30 राष्ट्रों वाली यह संस्था अफगानिस्तान से अपने नागरिकों और उन अफगानियों को जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद खतरे में पड़ गए हैं, सुरक्षित बाहर लाने के लिए कटिबद्ध है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल येन स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि स्थिति मुश्किल भी है और अकल्पनीय भी।
The main challenge we face, however, is ensuring that people can reach and enter Kabul airport. We expect the Taliban to allow for the safe passage of all foreign nationals and Afghans seeking to depart the country. This is the most urgent task today.
और अब खबरें भारत से। दुनिया की पहली डीएनए कोरोना वायरस वैक्सीन जाइकोवी डी को भारत में मंजूरी मिल गई है। जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित जाइकोवी डी वैक्सीन को डीसीजीआई ने शुक्रवार को मंजूरी दी है। वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलने के बाद इसकी पहले 28वें और 56वें दिन पर 3 डोज दी जा सकती हैं। इस वैक्सीन पर अब तक का सबसे बड़ा ट्रायल हुआ था, जिसमें करीब 28,000 लोग शामिल हुए थे। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी कि आपातकालीन स्थिति में ये दवा 12 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए प्रयोग की जा सकती है। भारत में पिछले 24 घंटों में कुल 34,457 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब तक देश में संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 3,24,00,000 के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में देश में कुल 375 लोगों की इस महामारी से मौत भी हुई है। भारत में फिलहाल कुल 3,61,340 एक्टिव केस हैं, जो पिछले 151 दिनों में सबसे कम है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी शनिवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 52.98 रुपए और अमरीकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 71 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल लीग में वेस्टर्न बुलडॉग्स से शानदार जीत के बाद पोर्ट एडिलेड शीर्ष 2 स्थानों में अपना खेल खत्म करेगा। ये वेस्टर्न बुलडॉग्स की तीसरी हार है, जिससे अब वे संभवतः 5वें स्थान पर खेल खत्म करेंगे। पोर्ट एडिलेड के कोच केन हिंकले का कहना है कि उनकी टीम का समर्पण अब उनके प्रदर्शन में नजर आ रहा है।
You know, there's been a lot of reasons, a lot of things that we're not quite good enough. We weren't quite good enough. But I said all the way through this season, wait till the end of 23, see where we finish. I think we've had 2 seasons in a row now, back-to-back seasons. And I think that's how you build to win a premiership, is you have to consistently do it.
और अंत में नजर डालते हैं कल यानी रविवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल धूप छांव के मौसम की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 18 डिग्री जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल दिन के साथ ही बारिश बढ़ती जाएगी। यहां अधिकतम तापमान 22 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में भी कल बादल छाए रहने के आसार हैं। यहां अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल बदली छाए रहने के आसार हैं। यहां अधिकतम तापमान 20 जबकि न्यूनतम 1 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल तेज धूप के आसार हैं। यहां अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में कल धूप ही धूप है। यहां अधिकतम तापमान 26 डिग्री जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। डार्विन में भी कल धूप ही धूप के आसार हैं। अधिकतम तापमान 33 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बिजली के साथ तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।